Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Sri Shankar Bhagavat Pad Virachita Dashashloki. न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायुर्न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूह अनैकान्तिकत्वात् तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मे धारणा ध्यान योगादयोऽपि अनात्माश्रयाहम् ममाध्यासहानात् तदेको वसिष्ठ शिवः के न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थम् सुसुप्तो निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेको वसिष्ठ शिव न सांख्यम् न शैवम् न तत्पाञ्चरात्रम् न जैनम् न मीमांसकादेर् विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वसिष्ठ शिवः के न चोर्ध्वम् न चाधो न चान्तर्न बाह्यम् न मध्यम् न तिर्यम् न पूर्वापरादि वियद्व्यापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेको शिवः केवलोऽहम् न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीनम् न कुब्जम् न पीतम् न ह्रस्वम् न दीर्घम् अरूपम् तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वसिष्ठ शिवः केवलो न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वम् न चाहम् न चायम् प्रपञ्च स्वरूपावबोधो विकल्पसहिष्णुस्तदेको वसिष्ठ शिवः के न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर् न विश्वो न वा तेजस् अविद्यात्तुरीयस्तदेको वसिष्ठ शिवः केवलोऽहम् अपि व्यापकत्वाधितत्वप्रयोगात् स्वतः सिद्धभावा अनन्याश्रयत्वा जगत्तुच्छमेतत् समस्तम् तदन्यत् तदेको वसिष्ठ शिवः के न चैकम् तदन्यद्वितीयम् कुतः स्यात् न वा केवलत्वम् न चाकेवल न शून्यम् न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथम् सर्ववेदान्तसिद्धम् ब्रवीमि। हम लोग भगवान की असीम अनुकंपा से प्रतिदिन इस श्लोक का पाठ कर रहे हैं। दश श्लोकी दस श्लोक है और नौ श्लोक तक सब में है। तदेको वशिष्ठ शिव केवलोम, इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया आप लोगों को? नौ श्लोक हो गए तो हम लोगों ने अपने आप को कितने बार बोला? नौ बार। दसवें श्लोक में तो सिद्धांत है और नौ श्लोकों में सबका निषेध कर दिया और हो गए हम शिव केवलो हम। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितने बार बोलते हैं? नौ बार। श्वेत केतु को कितने बार उपदेश दिया तत्वमसी का? नौ बार। मुझे लगता है नौ बार में पक्का हो जाता है। तो हम लोग रोज पाठ करते हैं तो दिन भर के लिए तो क्या हो गए? शिव केवलो हम। फिर कल आओ, फिर पाठ करो, फिर शिव केवलो हम। और करते करते इतना ये दृढ़ हो जाएगा। यही तो अभ्यास करने का तरीका है और क्या है? तो नौ श्लोकों में नौ बार, नौ ऐसे भी पूर्णता का प्रतीक है, पूर्ण अंक माना जाता है, इसलिए हम लोग अपनी पूर्णता का ही पाठ करते हैं। ऐसा कहा गया है भाववृत्त्या हि भावत्वम, शून्य वृत्त्या हि शून्यता। भाव का अभ्यास करो तो भाव की प्राप्ति होगी और शून्य का अभ्यास करेंगे तो शून्यता की प्राप्ति होगी। पूर्ण वृत्त्या हि पूर्णत्वम, और पूर्ण की वृत्ति बनाएंगे तो पूर्णता की प्राप्ति होगी। तस्मात् पूर्णत्वम अभ्यसेत, इसलिए अपनी पूर्णता का अभ्यास करना चाहिए। ये श्लोक है भाववृत्त्या हि भावत्वम, शून्य वृत्त्या हि शून्यता, पूर्ण वृत्त्या हि पूर्णत्वम, तस्मात् पूर्णत्वम अभ्यसेत। अभी कई दिनों से जो अध्यास की बात चल रही है, अध्यास प्रायः कहां पर होता है, ब्रह्मसूत्र की थोड़ी भी बात याद होगी, स्मृति रूपः परत्र दृष्टावभासः अध्यासः। बाहर के वस्तु को जो हम लोग गलत समझते हैं वो तो हो गया, जिसको हम गौण आत्मा कह सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गौण आत्मा। अपने शरीर से भिन्न वस्तु में जो आत्मत्व बुद्धि होवे और शरीर को जो आत्मा मानते हैं इसको बोलते हैं मिथ्या आत्मा। और मुख्य आत्मा तो है ही। आत्मा का लक्षण क्या किया? यच्च आपनोति यद आदत्ते यच्च अत्ति विषयान इह यच्चास्य संततो भाव तस्माद् आत्मेति गीयते। आत्मा का ये लक्षण है, आपलरी व्याप्तो, जो पूरा व्याप्त करके रहता है। यच्च आपनोति यदादत्ते, जागृत अवस्था में जागृत संबंधी जो भी व्यवहार होता है उस आत्मदेव की सत्ता में। स्वप्न में भले ही मन सपना देखता है, वहां पर एक विलक्षण सृष्टि का निर्माण करता है, न तत्र रथा न रथ योगान, उपनिषद का उदाहरण दिया, वहीं पर हाथी बन गए, घोड़े भी बन गए, रथ भी बन गया, रथ चलने का मार्ग भी बन गया। एक छोटे से मन के अंदर इतनी बड़े सृष्टि के रचयिता हम बन जाते हैं और सुषुप्ति में जाकर के कहते हैं कि मन आदि सब अपने व्यापार रहित होकर, अर्थात कुछ भी नहीं रह जाता, मन नाम की चीज वहां है ही नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव वहां पर होता है। एक बात आप लोगों से पूछते हैं, ब्रह्म है व्यापक, ब्रह्म है सच्चिदानंद स्वरूप, जैसे कहा था ना कि सूखा ज्ञान, वो ऐसा ही है। इससे समझ में आ जाएगा। जागृत अवस्था में व्यापक है परमात्मा, ये हम सत्संग में सुनते हैं, कथा में सुनते हैं, पुस्तक में पढ़ते हैं। सपने में न तो सत्संग करते हैं, न कथा सुनते हैं, न कोई पुस्तक पढ़ते हैं, और सुषुप्ति में तो समझ लो मामला ही चौपट है। अब कोई कहे कि जागृत अवस्था में जो आनंद हमें नहीं मिलता उसको हम स्वप्न में पाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है? नहीं। कई बार तो लोग बोलते क्या कहूं जी, आज तो रात्रि भर सपना ही देखता रहा। तो बोलते अच्छी बात हुई ना, सपना देखते रहो, क्या फर्क पड़ता है। जो बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन प्रसंग आता है तो बोलना पड़ जाता है। जितने भी ये लोग भाषण देते हैं रैली आदि में, लोगों को क्या दिखाते हैं? सपना दिखाते हैं कि और क्या दिखाते हैं? हो गया तो तुक्का लग गया, और नहीं हुआ तो अपनी समस्या बता देते, ये हो गया वो हो गया। सरकार नाम की चीज जो है ना बहुत खतरनाक चीज है। ऐसे तो सबके क्या बोलते हैं, अलवेली सरकार, वो तो कौन है एक सबके सरकार। सर्वम करोति इति सर्वकारः, संस्कृत में सरकार को सर्वकार बोलते हैं। और यहां जो हम लोगों के सरकार है वो एक गजब के सरकार है। पहले तो होता था कि राजा का बेटा राजा होगा, पेट से निकलने वाले को राजा मानो। धीरे धीरे विचार बदला, लोगों में आंदोलन हुआ और कहा कि अब पेट से निकलने वाले को हम नहीं मानेंगे, पेटी से निकलने वाले को मानेंगे। पेट की जगह पेटी स्वीकार किया। अब धीरे धीरे पेटी में भी धांधली होने लगी तो कहा कि अब तो हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन में भी ऐसा है, बंबई का तो मुझे नहीं पता, दिल्ली आदि में टैक्सी हो या ऑटो हो, वो मीटर में कुछ ऐसा फिट करते हैं अंदर अंदर, जिस हिसाब से मीटर चलना चाहिए उससे डबल चलता है। डबल चलने से किराया जो लगना चाहिए उचित उससे ज्यादा ले लेते हैं, ठगते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हमने ऐसा सुना, शायद आप लोगों को भी पता होगा, कई जगह जहां जिस पार्टी का वर्चस्व था उसने हर बटन का ऐसा सिस्टम फिट कर दिया कि कोई भी बटन दबाए उसी के चुनाव चिन्ह में जाकर के दब जाएगा। दबाव आप चाहे कोई भी कैसा अंदर अंदर उसको फिट किया होगा, ऐसी धांधली। तो पेट से निकलने वाले राजा को मानना स्वीकार किया तो हो गए पेटी वाले, पेटी से हो गए इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाले, अब तो कौन होगा भगवान जाने। जब ये आ गए सत्ता में, कोई काम करवाना था, क्यों अपने अनुभव सुना रहे थे, कोई जगह थी ऐसी वहां मंदिर बनवाना था, तो सबसे पहले वहां के स्थानीय जो पार्षद आदि होते उनसे बात की, कहा आप जरा अपने कागज सब दिखाना, कौन सी जमीन है कैसा है, देखा सब ठीक ठाक है। तो बोलता है कि मेरे तो बहुत इच्छा है कि यहां मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। कौन से ऊपर वाले? सबसे ऊपर वाला नहीं, उनसे थोड़ा नीचे रहना। तो कौन, किससे मिलना पड़ेगा? बोले जो विधायक है ना उससे बात करो। विधायक को दिखाया, उसने भी कहा कागज छोड़ दो, एक दो दिन कागज देखा नहीं देखा भगवान जाने। गया, क्या हुआ? तो विधायक ने कहा मेरी तो बहुत इच्छा है कि यहां मंदिर बनना चाहिए, लेकिन सरकार चाहेगी तब होगा। अब क्या करना पड़ेगा? बोले एमपी है उसके पास जाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, उसने भी कागज देखा, उसने भी यही बहाना किया कि मैं इस समय, मेरे पास कोई मंत्रालय तो है नहीं, मैं तो केवल पार्लियामेंट में जाके बैठता हूं, कभी कभी लोकसभा अध्यक्ष की कृपा होती है तो टाइम मिलता है थोड़ा बोलने का, तो हम अपने कुछ स्थानीय समस्या सुनाते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। जो मंत्री है, जो इसके हाथ में मंत्रालय है, उससे आप बात करो तो शायद काम बन जाए। काम बड़ा अच्छा है, मेरी भी पूरी इच्छा है, हमारी तरफ से आपके लिए पूरा सपोर्ट है। कैसे लोग बोलते हैं देखो तो सही, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सदात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, ऐसा लक्षण किया है। मन वाणी और कर्म से जो एक हो ये सज्जनों का लक्षण माना गया। मन में कुछ हो, वाणी में कुछ हो और क्रिया में कुछ हो, तीनों में भेद दिखाई देवे, ऐसा लक्षण जिसमें दिखे उसको दुरात्मा समझना चाहिए, दुर्जन का लक्षण है। बोल रहा है बढ़िया मधुर भाषा, लेकिन मन में क्या भाव है भगवान जाने। मंत्रालय वाले जो मंत्री थे उसके पास गए, कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है। उसने भी यही कहा, मेरी तो बहुत इच्छा है लेकिन सरकार चाहेगी तब होगा। महाराज करते करते प्रधानमंत्री से मिल लिया, राष्ट्रपति से मिल लिया, एक ही रोना, जो स्थानीय पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक सबने क्या कहा, हमारी पूरी इच्छा है, हमारा समर्थन है, सपोर्ट है, लेकिन सरकार चाहेगी तब होगा। उसने कहा हम तो राष्ट्रपति आपसे भी मिल लिए, प्रधानमंत्री से भी भेंट हो गई, ये सरकार नाम की कौन सी चीज है जो अभी तक हमें नहीं मिली, कहां है वो सरकार। सर्वम करोति इति सर्वकार, जो उनके हाथ में वही सब कुछ करने वाले। जागृत अवस्था में जो सरकार है उसी की सरकार चलती है स्वप्न अवस्था में, उसी की सरकार चलती है सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति और स्वप्न में हम लोग थोड़े पराधीनता का अनुभव करते हैं। पराधीनता ये है कि स्वप्न अवस्था में निद्रा दोष है, निद्रा नामक दोष होने के कारण मन में जो भी सृष्टि का निर्माण हुआ, हालांकि मैं इसका निर्माता हूं ये भी उस समय पता नहीं चलता। जब सो करके उठते हैं तब आपसे ही कोई पूछ लेवे, सपने में जो जो चीजें आपके अंदर दिखाई दिए वो कहां से आए, चाहे वो बाहर के अनुभव किए हुए पदार्थों का जो संस्कार था उसी के अनुसार ही तो सपना होता है। इसलिए जागृत और स्वप्न का लक्षण लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। पहले जागृत अवस्था की बात करते हैं। जागृत अवस्था में इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि जागरितम, ऐसा कहा, इंद्रियों के द्वारा विषय की जो उपलब्धि है। केवल उपलब्धि का मतलब यहां ये लेना है कि इंद्रियों से विषय का जो संबंध हो जाए, संपर्क हो जाए, तब नाम पड़ेगा उसका जागृत अवस्था। यदि केवल विषय के भान हो, प्रतीति हो, तो वह जागृत होते हुए भी स्वप्न माना जाएगा। गाड़ी में बैठे हो, अचानक आप ड्राइवर को कहीं की बात याद दिलाते हो, अरे कलकत्ते के जो तिवारी के वहां के संदेश मिठाई बनती है ना, बड़ा अच्छा होता है, मुंह में पानी आ गया कि नहीं। मालिक बोलेगा ऐसा तो ड्राइवर कहेगा क्या बात है बाबूजी, आज सपना देख रहे हो क्या, बात चल रही जागृत अवस्था में, गाड़ी में बैठे यात्रा हो रही है और उस समय अचानक किसी वस्तु विषय का स्मरण हुआ, लेकिन उसका अभी इंद्रिय से संपर्क नहीं है। मिठाई का नाम तो लिया है लेकिन जिह्वा पर नहीं है, मुंह में नहीं है। इसलिए जागृत होते हुए क्या है, स्वप्न है। अच्छा, सपने की चीज सच्ची होती है कि झूठी होती है, झूठी होती है। झूठी चीज से सच्ची चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, झूठी चीज से सच्ची चीज की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं। यदि सपने में खूंखार शेर दिख जाए और नींद खुल जाए तो ये काम हुआ कि नहीं हुआ, सपने का जो शेर दिखा वो सच्चा है कि झूठा, और नींद खुलना सच्चा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, नींद खुलना भी झूठा है, वो तो वेदांत पढ़ने पर ऐसे बोलोगे ना, यही तो ही बात चल रही थी कि सूखा ज्ञान ऐसे हो जाता है, सो के उठे और लोगों को कहोगे तू अभी उठा ही नहीं है, क्या कहा जाएगा? झूठा? अरे ऐसा नहीं चलेगा। कोई उठ जाए सो के, क्या कहोगे? तुम्हारा जो उठना है झूठा है? ना ना, ऐसे व्यवहार नहीं चलता है। यहां भले ही आप इतने बोलने की हिम्मत कर रहे हो, घर में बोल कर देखना। बोले आप प्रेमपुरी में उल्टा ज्ञान सीख के आते हो, उठे हुए को भी झूठा बता रहे हो। तो सपने में दिखने वाला शेर है झूठा, लेकिन नींद खुलना है सच्चा। न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा, जितने भी ये और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में तो है नहीं, क्या है वो? शिष्या चा विश्वम पश्यति कार्य कारण तया स्व स्वामी संबंधत, शिष्याचार्य तया तथैव पित्री पुत्राद्यात्मना भेदत। ये जितने भी है सब भेद पूर्वक होते हुए भी विश्वम पश्यति कार्य कारण तया, जिस जगत को हम देख रहे हैं जो ये दिखाई दे रहा है, लगता है कोई बनाने वाला कोई होगा, और जो ये बना हुआ है कुछ और है, बनाने वाला कोई और है। विचार करने पर क्या सिद्ध होता है? स्वयमेव जगद भूत्वा प्राविशद जीव रूपतः तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसने इसकी रचना की और उसमें स्वयं प्रविष्ट हो गया। स्वयं प्रविष्ट होने वाला भला कैसे कार्य कारण हो सकता है? लेकिन ऐसा देखने में आता है, विश्वम पश्यति कार्य कारण तया स्व स्वामी संबंधतः, हम सब उसके नियम में हो गए, वो हमारा नियामक हो गया, हम उसके शास्य हो गए, वो हमारा शासक हो गया। और इधर जब वेदांत पढ़ने लगे, न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा, सबका निषेध कर दिया। मेरे भगवान विष्णु की आराधना करने में लोग डरते हैं कि विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी, वो अपनी पत्नी को दूसरे को क्यों देंगे? तो बोले जो भी तेरे पास है वो भी अवैध है, सब इधर लाओ। वो ले लेते हैं। तो भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करे और धन संपत्ति बनी रहे, इसके लिए नर्मदेश्वर के साथ शालिग्राम की पूजा करे। शालिग्राम की पूजा करो तो नर्मदेश्वर को भी साथ में रखो। कदाचित भगवान विष्णु छीनना भी चाहे और शंकर जी को मनाते रहोगे तो शिव जी थोड़े विष्णु को रोकते हैं, थोड़े बेचारे को आनंद लेने दो, क्यों छीन रहे हो? वो अभी मुक्ति नहीं चाह रहा, वो तो केवल आनंद लेने के लिए कर रहा है आराधना। आज वो सर्वथा ही चाहेगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर विष्णु की आराधना करो और सब छीन लेते हैं। आज जिनको केवल संपत्ति चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो केवल शंकर जी की पूजा करे। भोले बाबा बहुत कुछ देते हैं, ये सब हमारे शास्त्रों की बातें हैं। तो मे इति ब्रुवाणम काल ब्रिको हंती पुरुषाजम, काल रूप जो ब्रिक है, भेड़िया है, उस अजाग के जो है हनन कर देते हैं, उसको मार डालते हैं। और ये न मे इति नम, और नम का उल्टा करो तो मनः, को देवो यह मनः साक्षी, कौन देव है? बोले जो मन का भी साक्षी है। मन को ही हम चित्त भी बोलते हैं, और चित्त इसलिए नाम पड़ता है, चित्त और चित्त दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कैसे बनता है चित्त? तो चित्त मतलब चेतन, परमात्मा। यदि मन पूरा चेतन में व्याप्त हो जाए तो फिर मन का नाम मन नहीं रह जाता है, वो चेतन स्वरूप ही होता है। मन की अपनी कोई सत्ता तो है नहीं, जड़ है वो तो। लेकिन जब तक मन को उस चित्त से अलग करके देखते हैं तब उसी का नाम पड़ता है चित्त। तकारो विषयाध्यासु, एक तकार है केवल चित्त तो वो हो गया चेतन, और जब डबल तकार होगा तो उसका नाम पड़ेगा चित्त। ये अंतर है। अब हम लोगों को अपने मन को क्या बनाना है? ओमकार के द्वारा एकाग्र हो जाने पर अब इस मन में केवल क्या होना चाहिए? परमात्मा के स्वरूप का चिंतन जब होता है तो अभी तक व्यक्ति भेद वस्तु भेद बना हुआ था। जब उस मन में हमने अभेद परमात्मा को जाना तो ऐसी कोई जगह नहीं, कोई वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा का दर्शन न हो। इतनी सी बात है, ज्ञानी और अज्ञानी की अवस्था में ज्ञानी सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वे पिकल्पद्रुमा। पूरा संसार उसको नंदन वन के रूप में दिखाई देता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा की सत्ता ना हो। लेकिन अभी तक आणविक बिजली, कचरे से भी बिजली बनती है, अलग अलग सोलर पावर, सूर्य के द्वारा भी हमें वो पावर मिल जाते हैं। बिजली के उत्पत्ति, बिजली बनने का तरीका भिन्न भिन्न होने पर भी उसके जो उपयोग करने का तरीका है उसमें भी भिन्नता है। लेकिन सामान्य से सामान्य आदमी भी उस बिजली के द्वारा लट्टू पंखा तो चला ही लेता है, उसका भी काम चलता है। जो बिजली बनाने वाले हैं, जो वहां काम करने में लगे हैं, वो भी उसका भी अपना जितना प्रयोजन है उतना तो कर ही लेता है। लेकिन जो बना रहा है उसको पता है कि जितने भी ये बिजली बन रही, बिजली नाम की चीज तो एक ही है, उसके प्रयोग करने का भेद है, साधनों में भेद है। ऐसे वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन औपाधिक भेदों को देखते हुए